पृष्ठ संख्या 231, गत सदी एवं आधुनिक काल की कुछ पखावज वादिकाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद दरबार में एक स्त्री पखावज वादिका थीं, जिनके विषय में गायन साम्राज्ञी श्रीमती केसरबाई केलकर ने सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री वामन राव देशपांडे को एक रोचक घटना सुनाई थी। मुझे श्री वामन राव देशपांडे से इस घटना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो इस प्रकार है। लगभग 1925 के आसपास की बात है। एक बार श्रीमती केसरबाई केलकर निजाम के आमंत्रण पर अपना गायन पेश करने हैदराबाद गई थीं। वहां उन्हें पता चला कि निजाम के जनान खाने में एक अति वृद्धा किंतु गुणी महिला पखावज वादिका हैं, जो बेगमों को पखावज सिखाती हैं, सुनाती हैं तथा कलाकारों की साथ संगत भी करती हैं। केसरबाई ने तुरंत उस महिला से मिलने की इच्छा प्रकट की। मिलने से ज्ञात हुआ कि अति वृद्धा हो जाने के कारण उस महिला की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, अतः वे पखावज बजाने में असमर्थ थी। वे केसरबाई के सामने बजा तो नहीं सकी, परंतु इनका मन रखने के लिए उन्होंने पखावज की अनेक सुंदर परने उन्हें पढ़कर सुनाई, जिन्हें सुनकर केसरबाई मंत्रमुग्ध हो गई। उनके अनुसार वह महिला पखावजी सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य नाना पानसे की सुपुत्री थी। यद्यपि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, तथापि ऐसी उच्च श्रेणी की महिला तालवादिका हैदराबाद दरबार में मुलाजिम थी। यह हकीकत वहां के निजाम के कला प्रेमी, उनकी गुणग्राही दृष्टि तथा भारत में महिलाएं भी सदियों से तबला, पखावज, ढोल, मार्दल जैसे तालवाद्य बजाती आ रही हैं, जैसे तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपरोक्त घटना का उल्लेख संगीत के महिला अंक सन 1986 के भूली बिसरी महिला कलाकार लेख में भी हुआ है। गत पीढ़ी की पखावज वादिकाओं में एक नाम श्रीमती गीता बहन साराभाई का लिया जाता है, जो सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य पंडित गोविंद राव बुरहानपुर पुरकर की शिष्या तथा अहमदाबाद के श्रेष्ठ अंबादास साराभाई की सुपुत्री थी। कहते हैं कि पंडित गोविंद राव बुरहानपुरकर ने वर्षों तक सेठ अंबादास जी के घर अहमदाबाद में रहकर श्रीमती गीता बहन को शिक्षा दी। तदुपरांत 56 छुरी उपनाम रखने वाली एक गायिका महिला भी पखावज वादन में दक्ष थी। कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज में झुमकीबाई नाम की एक महिला नक्कारा वादन में अत्यंत दक्ष थी, जबकि छोटी मैना और बड़ी मैना नामक दो गायिकाएं एक दूसरे की पखावज पर संगत किया करती थीं। आजकल युवा पीढ़ी की उदीयमान पखावज वादिका कुमारी चित्रांगना आगले इस क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त कर रही हैं। वह इंदौर के नाना पानसे घराने के सुविख्यात मृदंगाचार्य पंडित अंबादास पंत आगले की पौत्री और बीजना के राजा छत्रपति सिंह जू देव जैसे मृदंगाचार्य की शिष्या हैं। संगीत जगत को इनसे काफ़ी आशाएं हैं। सुना है कि लखनऊ की कुमारी पूर्वा नरेश भी उदीयमान पखावज कलाकार के रूप में आजकल उभर रही हैं। पृष्ठ संख्या 232, कुछ महिला तबला वादिकाएं। गत सदी की महिला तबला कलाकारों में लखनऊ घराने के प्रवर्तक उस्ताद मौदू खां की पत्नी का नाम सादर लिया जाता है। लोकोक्ति के अनुसार वे पंजाब घराने की किसी बड़े उस्ताद की पुत्री थीं, जिन्हें अपने वालिद से तबले की दीर्घ शिक्षा प्राप्त हुई थी, अतः इन्हें अपने पिता की अनेक बंदिशें याद थीं। संगीत जगत में इनके लिए अनेक किंवदंतियां फैली हैं, जिनमें से एक निम्नलिखित है। बनारस घराने के प्रवर्तक उस्ताद राम सहाय मिश्र लखनऊ के उस्ताद मोदू खां के शिष्य थे। 12 वर्ष तक वे अपने गुरु उस्ताद मोदू खां के घर में परिवार के सदस्य की तरह रहकर उनसे तबला सीखते रहे। कहते हैं कि उन्हें अपने गुरु के साथ साथ गुरु माता का भी बहुत स्नेह मिला था। उस्ताद मोदू खां जब लखनऊ शहर से बाहर चले जाते थे, तब राम सहाय को शिक्षा देने का कार्य उनकी विदुषी गुरु माता संभालती थीं। वे उन्हें अपने पंजाब घराने की बंदिशें सिखाया करती थीं। इस प्रकार राम सहाय को अपने उस्ताद मोदू खां से लखनऊ घराने की तथा अपने गुरु माता से पंजाब घराने की विद्या प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था, जिसके फलस्वरूप बनारस घराना अस्तित्व में आया है। आज भी बनारस घराने के कलाकारों में पंजाबी गतें बजाने का चलन देखा जाता है। खेद है कि उस्ताद मोदू खां की विदुषी पत्नी का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं है। लखनऊ घराने के प्रवर्तकों में उस्ताद मोदू खां के छोटे भाई उस्ताद बक्सू खां ने अपनी एक बेटी को तबले की शिक्षा दी थी। तत्पश्चात उस्ताद ने उसका विवाह अपने एक होनहार एवं प्रिय शिष्य के साथ कर दिया था, जो बाद में फरुखाबाद घराने के प्रवर्तक हाजी विलायत अली के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। गुरु पुत्री होने के कारण हाजी साहब अपनी बेगम का बहुत आदर करते थे तथा अपने शिष्यों का गंडा बंधन उन्हीं के हाथों से करवाते थे। हाजी विलायत अली के एक विख्यात शिष्य चूड़िया वाले इमाम बख्श हुए हैं। उनके विषय में भी अनेक कथा कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि उस्ताद इमाम बख्श के गंडा बंधन संस्कार के अवसर पर हाजी साहब की पत्नी ने अपनी चूड़ियां उतारकर इमाम बख्श के हाथों में पहना दी थीं। अपनी गुरु माता के प्रति अत्यंत आदर के कारण इस प्रसंग की स्मृति में उस्ताद इमाम बख्श ने वह चूड़ियां जीवन पर्यंत अपने हाथ में पहने रखी, अतः लोग उन्हें चूड़िया वाले इमाम बख्श कहने लगे। आज भी संगीत जगत में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। खेद है कि हाजी साहब की पत्नी का नाम भी अमान है। उस्ताद बक्सू खां के पुत्र उस्ताद मम्मन खां उर्फ मम्मू खां की दो पुत्रियां मोटी बीबी तथा छोटी बीबी दोनों तबले की अच्छी जानकार थीं। दोनों बहनों को लखनऊ घराने के तबले की अनेक बंदिशें कंठस्थ थीं एवं इन्हें बजाने में भी वे निपुण थीं। कहते हैं कि उन दिनों बादशाह बेगम नवाबों के सामने खड़े होकर तथा कमर पर तबला जोड़ी बांधकर उसे बजाने का प्रचलन था। अतः छोटी बीबी लखनऊ के नवाब के अंतःपुर में बेगमों के सम्मुख कमर पर तबला बांधकर गायक गायन वादन नृत्य की संगत किया करती थी। छोटी बीबी ने स्वयं अपने पुत्र बाबू खां को अपने घराने का तबला सिखाया था। दोनों माँ बेटे तत्पश्चात कलकत्ता चले गए, जहाँ बाबू खां ने अपने घराने की वादन शैली का खूब प्रचार किया। पृष्ठ संख्या 233। अतः उस्ताद बाबू खां की लंबी शिष्य परंपरा आज भी कलकत्ता में फैली मिलती है। लखनऊ घराने के उस्ताद मोहम्मद खां की पौत्री खम्मन बीबी को तबले की अच्छी जानकारी थी। इनायत हुसैन, रजा हुसैन तथा सुल्तान हुसैन नाम के अपने तीनों पुत्रों को खम्मन बीवी ने ही तबला सिखाया था। फरुखाबाद के सलारी मियाँ के शिष्य परिवार में जमीला खातून नाम की एक महिला अच्छा तबला बजाती थी। विभाजन के पश्चात वे पाकिस्तान चली गईं। 20वीं सदी के 3-4 दशक तक शाही परिवारों के अंतःपुरों में, उत्सवों में तथा स्त्रियों की गोष्ठियों में पेशेवर तबला वादकों के घरों की महिलाएं तबला बजाने जाती थीं। उन्हें डोमनी अथवा मिरासिल कहा जाता था। अनुमान है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं उन दिनों तबला बजाती रही होंगी, किंतु उनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभी 40-50 वर्ष पहले भी महिलाएं रंगमंच से तबला पखावज वादन प्रस्तुत करने में हिचकिचाती थीं। यदि उन्हें भी उचित प्रोत्साहन मिला होता तो वे भी इस क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष होती। खेद है कि काल के गर्त में डूबी इन अज्ञात महिलाओं के नाम तक हम नहीं जानते। आधुनिक महिला ताल वादिकाओं की स्थिति तथा इन क्षेत्र में व्यावसायिक महिला कलाकारों की कमी। हम देख चुके हैं कि गत पीढ़ी की प्रतिभा संपन्न ताल वादिकाओं को हमारी सामाजिक कुरीतियों के कारण काफी सहन करना पड़ता, किंतु आज की परिस्थिति भिन्न है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी के जीवन में काफी परिवर्तन आ गया है। हमारी आधुनिक सुशिक्षित महिला कलाकारों ने हिम्मत, विश्वास और कठिन परिश्रम के द्वारा तबला जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में न केवल प्रवेश ही किया है, बल्कि उसे व्यावसायिक रूप से अपनाकर उसमें अपना नाम और स्थान भी बना लिया है। देश के अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं अकादमियों में अनेक महिलाएं तबला सीखने लगी हैं तथा स्वयं सिखाने लगी हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में महिला छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किंतु इतनी बड़ी तादाद में तबला सीखने के बावजूद बहुत कम महिलाएं उच्च स्तर की व्यावसायिक तबला कलाकार बन सकी हैं तथा इस क्षेत्र में अपने आप को सम्मानपूर्वक स्थापित कर सकी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। जैसे एक, लंबे अरसे से ताल वादियों के क्षेत्र में पुरुषों का ही एकाधिकार रहने के कारण इस क्षेत्र में महिलाओं का हस्तक्षेप पुरुष कलाकारों के अहम को ठेस पहुंचाता है। दूसरा, और तो और स्वयं कलाकार महिलाएं भी स्त्री ताल वादिकाओं की क्षमता पर विश्वास नहीं कर पाती, अतः वे अपने गायन वादन के साथ संगति के लिए उन्हें अपने साथ बिठाने में हिचकिचाती हैं। तीसरा, महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक प्रकृति उन्हें इस क्षेत्र में आगे न लाने में कुछ हद तक बाध्य हो जाती है। कई बार उन्हें अपने परिवार के लोगों से दूसरे शहरों में अकेले जाकर कार्यक्रम देने की अनुमति नहीं मिलती। यद्यपि ऐसी समस्याओं का दृढ़ता से सामना कर समाधान किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 234। चौथा, देखा गया है कि कई महिलाएं विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में डिग्रियां प्राप्त करने के हेतु केवल एक विषय के रूप में तबला सीखने लगती हैं। अतः बीए या एमए की उपाधियां मिल जाने के बाद उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और उनके लिए तबला शिक्षण का महत्व भी समाप्त हो जाता है। पांचवा, विवाह के पश्चात महिलाओं को अपने ससुराल वालों के आदेशों का अनुसरण करना पड़ता है। कई बार महिलाओं को, विशेषतः नववधुओं को, रंगमंच से कला प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती। माता पिता, पति या ससुराल वाले यदि उदात विचार के हों तो भी संसार की जिम्मेदारियों में संगीत अपने आप पीछे छूट जाता है। अतः तबला क्षेत्र में कुछ कर दिखाने की क्षमता रखने वाली प्रतिभा संपन्न महिलाओं को कई बार अविवाहित रहने का फैसला करना पड़ता है। छठवां, तबला मूलतः संगति का वाद्य होने के कारण महिलाएं इसे व्यावसायिक रूप से अपनाने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में संगीतकारों को योग्य सम्मान नहीं मिलता तथा इन्हें अनेक आवश्यक सुविधाओं से भी उपेक्षित रहना पड़ता है। कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे पुरुष संगीतकारों की स्थिति भी विशेष सम्मानजनक नहीं होती। फिर महिलाओं की तो बात ही क्या। मुख्य कलाकारों से कार्यक्रमों का नियमित अनुबंधन पाने के लिए संगतिकारों को इनकी अनेक सही गलत हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अतः ऐसी परिस्थिति में कोई स्वाभिमानी महिला भला कहाँ तक टिक सकती, जब हमारे सभी संगीतकारों को भी उतना ही सम्मान मिलने लगेगा जितना कि एक मुख्य कलाकार को मिलता है। तब संगीत के क्षेत्र में निःसंदेह अनेक महिलाएं निःसंकोच होकर तबला वादकों को व्यावसायिक रूप से अपनाने लगेंगी। अभी कुछ वर्ष पहले भी अर्थात सन 1955 के आसपास इस क्षेत्र में आगे आने की मनेच्छा रखने वाली महिलाओं को समाज एवं अपने सह कलाकारों की हंसी मजाक एवं उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। मैं स्वयं ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरी हूँ और पग पग पर मैंने भी अनेक चुनौतियों का सामना किया है। यदि मुझे अपने गुरुओं द्वारा योग्य तालीम, रियाज करने का सही तरीका, दृढ़ मनोबल से विषय संजोगों पर हावी होने की शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन नहीं मिला होता तो कदाचित मैं भी इस क्षेत्र को कभी का त्याग चुकी होती। यद्यपि आज समय और संजोग बदल चुके हैं, आज तबले के क्षेत्र में ही नहीं वखावज वादन में भी अनेक महिलाएं ख्याति प्राप्त कर रही हैं। आज की सुशिक्षित महिलाएं अब अबला नहीं रही, वे सबला हो चुकी हैं। अब अबला और तबला का जमाना पीछे छूट गया है। पिछले 2-3 दशकों में अनेक कुशल ताल वादिकाओं ने अब इस क्षेत्र में प्रवेश करके अपना निश्चित स्थान बना लिया है। हमें विश्वास होने लगा है कि संगीत जगत में महिला ताल वादिकाओं के पैर अब जमने लगे हैं तथा उनका भविष्य उज्जवल है। यदि इसी तरह महिलाएं आगे बढ़ती रहीं और इस क्षेत्र में अपनी सार्थक भूमिकाएं निभाती रहीं तो वे निश्चित ही अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकेंगी और पुरुष वादकों का जमकर मुकाबला कर सकेंगी। अब वह समय दूर नहीं है जब तालवादी के क्षेत्र से केवल पुरुषों का एकाधिकार समाप्त होने वाला है। पृष्ठ संख्या 235। अब हम कुछ ऐसी प्रतिष्ठित और नवोदित तबला वादिकाओं की यहाँ चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी योग्यता और आत्मविश्वास के सहारे इस क्षेत्र में उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त की है। आधुनिक युग की महिला तबला कलाकारों में दिल्ली की डॉक्टर श्रीमती योग माया शुक्ल उम्र के लिहाज से सब में वयस्क हैं। उन्होंने तबला वादन की शिक्षा उस्ताद फुलझड़ी खां यार रसूल, पंडित सखाराम मृदंगाचार्य तथा उस्ताद मुन्ने खां से ली है। श्रीमती योग माया शुक्ल दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से अवकाश प्राप्त कर चुकी हैं। वे कई बार मॉरिशियस में भी तबले की अध्यापिका के रूप में कार्यरत रही हैं। क्रियात्मक एवं शास्त्र दोनों में निपुण डॉक्टर योग माया शुक्ल तालमणि की उपाधि से अलंकृत हैं। उनका शोध ग्रंथ तबला का उद्गम और विकास तबले के प्रति उनके समर्पण एवं अध्ययन का परिचायक है। बरेली के डॉक्टर रमा बल्लभ मिश्र की शिष्या कुमारी शोभा रानी कुदेसिया ने तबला वादन में काफी कीर्ति अर्जित की है। वे अलीगढ़ के टीकाराम संगीत महाविद्यालय में तबले की प्राध्यापिका हैं तथा शिक्षण कार्य एवं कार्यक्रम दोनों में व्यस्त रहती हैं। अनेक उपाधियों से अलंकृत शोभा रानी स्वतंत्र तबला वादन तथा संगत दोनों में प्रवीण हैं तथा देश भर में अनेक कार्यक्रम बजाकर उज्ज्वल ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। कानपुर के श्री केशव आनंद शर्मा की पत्नी एवं शिष्या श्रीमती नीलम शर्मा तबले की कुशल कलाकारा हैं। वे सोलो तथा संगत दोनों में कुशलता रखती हैं। श्रीमती नीलम कानपुर के एक महिला महाविद्यालय में अध्यापिका हैं तथा स्वयं एक संगीत विद्यालय की संचालिका एवं प्राचार्य भी हैं। तबले के साथ साथ श्रीमती नीलम ने कथक नृत्य एवं विशेषतः शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया है। श्रीमती नीलम का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल दिखता है। इंदौर की श्रीमती संगीता मजूमदार अग्निहोत्री ने अपने पिता श्री दिनकर मजूमदार से तबला सीखा है जो उस्ताद जहांगीर खां के प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। श्रीमती संगीता स्वतंत्र तबला वादन तथा संगत दोनों पर अपना पूर्ण अधिकार रखती हैं और देश भर में काफी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। इस प्रतिभाशाली युवा तबला वादिका का भविष्य हमें अत्यंत उज्जवल दिखता है। तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन की शिष्या कुमारी अनुराधा पाल भी इस क्षेत्र में आजकल काफी कीर्ति अर्जित कर रही हैं। वे संगति करने में अत्यंत कुशल हैं और सोलो में भी बजा लेती हैं। देश विदेशों का दौरा करके कुमारी अनुराधा ने अनेक उच्च कोटि के कलाकारों की संगति की है। इस युवा तबला वादिका से संगीत जगत को काफी अपेक्षा है। तदुपरांत उस्ताद अल्लाह रखा की दो विदेशी शिष्याएं कुमारी मैरी जॉनसन तथा कुमारी जेनसी तंतुवादियों की संगति करने में कुशल हैं। जब कोई भारतीय कलाकार अमेरिका जाता है, तब वे दोनों उनकी अच्छी संगति कर लेती हैं। श्री शंकर अप्पा अलकुटकर की शिष्या श्रीमती दुर्गाबाई नाना पानसे घराने की कलाकार हैं। वे हैदराबाद में रहती हैं। पृष्ठ संख्या 236। बंगाल के पंडित मुरारी मोहन गुप्त के शिष्य श्री सतीश चंद्र उर्फ दानी बाबू की दो शिष्याएं कुमारी दीना राय तथा कुमारी माया राय भी तबला वादन में कुशलता रखती हैं। इस लेखिका की शिष्या श्रीमती विद्या परब सावंत उत्कृष्ट तबला वादक करती हैं। स्वतंत्र तबला वादन में विद्या जी की क्षमता अद्भुत है। तबले के साथ साथ वह हारमोनियम वादन तथा गायन में भी दक्षता रखती हैं। भुवनेश्वर की कुमारी कल्पना राउत फरुखाबाद घराने की होनहार कलाकारा हैं। वे स्वतंत्र तबला वादन में अपना विशेष अधिकार रखती हैं। रायगढ़ के ठाकुर वेदमणि सिंह की होनहार शिष्या श्रीमती अलका आठले अप्रचलित तालों के वादन में अत्यंत रुचि रखती हैं। वादन के साथ साथ वे संगीत शास्त्र के अभ्यास में तथा संगीत संबंधी लेखन कार्य में भी दिलचस्पी रखती हैं। कल्याण के श्री पुंडलिक आबोजकर की शिष्या कुमारी उषा प्रभु दसाई श्रीमती विद्या जैल तथा पुणे की श्रीमती शिरगोपीकर तीनों तबला वादन में कुशल हैं। कुमारी उषा प्रभु देसाई ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। तबला संबंधी अनेक पुस्तकों के प्रतिष्ठित लेखक स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ की पुत्री श्रीमती उषा और पुत्रवधू श्रीमती नीलम तबला वादन में कुशल होने के साथ साथ आगरा में तबला की मानी हुई शिक्षिकाएं हैं। कोल्हापुर की श्रीमती सुवर्णा घोलकर श्री केशवराव धर्माधिकारी तथा मुंबई के श्री नारायण जोशी की शिष्या हैं। वे तबला वादन में कुशलता रखती हैं। मुंबई के कुमारी भक्ति बर्वे पंडित अरविंद मुलगावकर से सीखती हैं। ठाणे की कुमारी स्मिता महास्कर श्री बसंत लेले की शिष्या हैं। मुंबई की कुमारी अल्पना जोशी तथा कुमारी शिवानी नायक पंडित सुरेश तलवलकर की शिष्याएं हैं। कुमारी शिवानी नायक ने तबले की प्राथमिक शिक्षा पंडित मल्हार राव कुलकर्णी से भी प्राप्त की है। चारों युवतियां अपनी तबला शिक्षा के प्रति काफी सजग और समर्पित हैं। उज्जैन के श्री ललित कुमार महंत की शिष्या वर्षा अग्रवाल तथा अजराणा घराने के उस्ताद निसार हुसैन खां की शिष्या श्रीमती संगीता त्रिवेदी दोनों नवोदित तबला वादिकाएं हैं। दोनों ने काफी संघर्ष करके तबला सीखा है। कुमारी वर्षा अग्रवाल झाड़ावाल राजस्थान की रहने वाली हैं। वे तबला के साथ साथ गायन में भी दक्ष हैं। श्रीमती संगीता त्रिवेदी दतिया मध्य प्रदेश की निवासिनी हैं, किंतु उन्होंने दिल्ली में रहकर उस्ताद बुंदू खां से भी तबले की दीर्घ शिक्षा प्राप्त की हैं तथा तबले में अपना नाम और स्थान बनाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं। पंडित शारदा सहाय की विदेशी शिक्षा डॉक्टर शेफर्ड स्वयं तो तबला बजाती ही हैं, इंग्लैंड में तबले का एक स्कूल भी चलाती हैं। पंडित समता प्रसाद की शिष्या श्रीमती श्रीमती किरण श्रीवास्तव ने तबले पर शोध कार्य किया है, तो उनकी दूसरी शिष्या श्रीमती संध्या वाजपेयी जैमिनी आजकल इंदौर महिला संगीत विद्यालय में अध्यापन कार्य में निमग्न है। पृष्ठ संख्या 237। दोनों तबला वादन में भी कुशल हैं। तदुपरांत पंडित समता प्रसाद, पंडित शारदा सहाय तथा बनारस के दूसरे अनेक सुप्रसिद्ध तबला वादकों से कई भारतीय एवं विदेशी महिलाओं ने तबला सीखा है या सीख रही हैं। लखनऊ के पंडित रंगनाथ मिश्र की शिष्या श्रीमती सावित्री सिन्हा तथा भारतेंदु वाजपेयी की शिष्या श्रीमती श्रद्धा मिश्र दोनों कुशल तबला वादिकाएं हैं तथा लखनऊ के संगीत महाविद्यालयों में अध्यापिकाओं के पद पर नियुक्त भी हैं। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज के शिष्य पंडित नंदन मेहता, जो अहमदाबाद के निवासी हैं, की सुपुत्री कुमारी हेतल मेहता तथा शिष्या कुमारी भारती पंचनानी दोनों होनहार तबला वादिकाएं हैं तथा तबले के अभ्यास में पूर्णतः व्यस्त हैं। तदुपरांत भूसावल के श्री बसंत बापट की शिष्या कुमारी कुसुम भारवे, मिरज के पंडित भानुदास गुरव एवं पंडित गणपत राव कवठेकर की शिष्या कुमारी सुहासिनी कुलकर्णी, सोलापुर के तबला विद्वान पंडित भीमराव कनकधर की सुपुत्री कुसुम, श्रीलंका निवासिनी कुमारी शांति बाला, नाना पांसे घराने की कुमारी श्याममला, इलाहाबाद की कुमारी रागिनी शर्मा तथा कुमारी शकुन अग्रवाल, उस्ताद अमीर हुसैन खान की दो शिष्याएं कुमारी गुलाब तथा कुमारी पवार, कोल्हापुर की होनहार बालिका कुमारी रेवती फाले, कलकत्ता की होनहार बालिका कुमारी रिम्पा शिवा, कराड के पंडित रमाकांत देवलेकर की शिष्या कुमारी प्राची सावरकर, पंडित मल्हार राव कुलकर्णी की शिष्या कुमारी पल्लवी नाफडे, संगीत भारती मुंबई की कुमारी सारिका पुनंत हामबेकर, तदुपरांत कुमारी गीता दत्त, कुमारी माया, कुमारी अर्पणा देवी, डॉक्टर गुलशन सक्सेना, कुमारी कुसुम अग्रवाल इत्यादि अनेक नवोदित तबला वादिकाएं अब धीरे धीरे प्रकाश में आ रही हैं। इनमें कुछ का भविष्य तो अत्यंत उज्जवल दिखता है। डॉक्टर गुलशन सक्सेना ने तालों के तुलनात्मक विवेचन पर अध्ययनपूर्ण शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट भी प्राप्त किया है। इस संदर्भ में कलकत्ता की तबला वादिका कुमारी रिम्पा शिवा का उल्लेख करना आवश्यक है। आपने अपने पिता से लखनऊ घराने की तालीम पाई है। रिम्पा में गजब की तैयारी और मंच प्रदर्शन की कला है, जिससे कलाकार और जनता दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ इस लेख की लेखिका का परिचय अप्रासंगिक नहीं होगा, जो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में संबंधित एवं तबले के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। लेखिका ने तबला वादन की शिक्षा मुंबई के विद्वान पंडित केकी एस जीजिना से तथा तबला नवाज उस्ताद अमीर हुसैन खां से प्राप्त की है। तबले के उपरांत पंडित केकी एस जीजिना ने सितार, ग्वालियर घराने के पंडित लक्ष्मण राव बोडस से गायन, पंडित नारायण राव मंगल वेढेकर से पखावज, कुमारी कुमी लाकडावाला से कथक नृत्य तथा पंडित जय सुखलाल शाह से संगीत शास्त्र की भी दीर्घ तालीम ली है। गहन संशोधन के पश्चात लेखिका ने पंडित बी आर आठवले के निर्देशन में पखावज और तबला के घराने एवं परंपराएं नामक शोध ग्रंथ तैयार किया, जो प्रकाशित हो चुका है तथा विविध विश्वविद्यालयों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। सन 1973 में लेखिका की ध्वनि मुद्रिका बनी, जो देश में किसी महिला कलाकार की तबले की प्रथम ध्वनि मुद्रिका थी। पृष्ठ संख्या 238। देश विदेशों में तबला वादन के अनेक कार्यक्रमों के उपरांत लेखिका विविध मानद उपाधियों से अलंकृत हैं तथा महिला तथा महाविद्यालयों एवं अकादमियों में सप्रयोग व्याख्यान एवं वर्कशॉप के लिए आमंत्रित की जाती हैं। विविध विश्वविद्यालयों में परीक्षा बोर्ड में परीक्षक के रूप में शोध प्रबंध की निर्देशिका के रूप में तथा आमंत्रित प्राध्यापिका के रूप में लेखिका एक लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। तालवाद्य के क्षेत्र में एक नवीन युग का अब उदय हो चुका है। आज अनेक महत्वाकांक्षी महिलाएं परिश्रम पूर्वक तबला सीख रही हैं, बजा रही हैं तथा इस क्षेत्र में अपनी पूर्ण लगन, आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम के द्वारा अनन्य ख्याति प्राप्त कर रही हैं। इस लेख में अपनी जानकारी के अनुसार लगभग सभी जानी मानी ताल वादिकाओं के नामों को समाविष्ट करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है। मुंबई विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा आयोजित तबला सेमिनार हिंदुस्तानी संगीतान संगीतातील लय ताल रूपे में प्रस्तुत आलेख का संशोधित रूप।